नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी के साथ बात की। पश्चिम एशिया में ऊर्जा ढांचे पर हमलों की निंदा की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। ईरान ने इसराइल के उत्तरी शहर हाइफा में तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमले किए हैं। एडटेक उद्यमी अलख पांडे फोर्ब्स की 2026 की विश्व अरबपतियों की सूची में शामिल। भारत के भूपति राजू अन्मेष वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया और भारत 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी के साथ टेलीफोन पर बात कर ईद की शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत कतर के साथ एकजुटता से खड़ा है और क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे पर हमले की निंदा करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कतर में भारतीय समुदाय की देखभाल और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की कामना की। दोनों नेताओं ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन पर बल दिया। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हाल के हमलों को बेहद चिंताजनक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन हमलों से वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के और अधिक अस्थिर होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि एलपीजी की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है, सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है और ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के इस्तेमाल पर काम कर रही है।
शिपिंग के रास्तों में रुकावट आई है जिससे एलपीजी की सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है, इसलिए हम घरेलू खपत और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम दूसरे देशों से भी एलपीजी मांगने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे देश में ऊर्जा की कमी न हो।
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। इन देशों ने ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात भी कही है। एक रिपोर्ट।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के कार्यालय की ओर से जारी संयुक्त बयान में इन देशों ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और उससे तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है। उन्होंने ईरान से अपील की कि वे होर्मुज जल डमरू मध्य को व्यापारिक जहाजों के लिए बंद करने की धमकी देना, बारूदी सुरंग बिछाना तथा ड्रोन और मिसाइल हमले तुरंत बंद करें। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के रास्ते में रुकावट और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्री मार्गों की आज़ादी अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अहम सिद्धांत है और ईरान की कार्रवाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहित अन्य देशों से अपील की कि वे होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से व्यापारिक जहाजों के लिए खोलने में मदद करें। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से तेल और गैस केंद्रों को नुकसान पहुंचा है जिससे कीमतें बढ़ी है।
विश्व दर्पण के लिए मैं अमीशा।
उधर इसराइल ने कहा है कि उत्तरी शहर हाइफा में एक तेल रिफाइनरी पर ईरान के मिसाइल हमले से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार हाइफा में कई जगहों पर बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं। पिछले महीने ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद से ईरान लगातार पश्चिम एशिया में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इस हफ्ते ईरान ने अपने साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इसराइल के हमले के जवाब में खाड़ी क्षेत्र के कई तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका का सैन्य अभियान पूरी दुनिया की रक्षा के लिए है। कल यरूशलम में उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक कमजोर हो गई है और ईरान अब यूरेनियम संवर्धन या बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण नहीं कर सकता। श्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग को बाधित कर दुनिया को परेशान करने के प्रयास में सफल नहीं होगा। ईरान ने पश्चिम एशिया के देशों से अपील की है कि वे अमरीका को अपने क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों का उपयोग न करने दें। ईरान ने कहा है कि इन ठिकानों के कारण ही मौजूदा संकट पैदा हुआ है, इसलिए ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता के लिए अमरीका और इसराइल को क्षेत्र का उपयोग नहीं करने दिया जाना चाहिए, अन्यथा इन देशों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची से ईरान के साथ युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर और अधिक समर्थन देने का आग्रह किया है। सुश्री तकाइची ने कहा कि उन्होंने होमुर्ज जल डमरू मध्य से बारूदी सुरंगों को हटाने और टैंकरों को सुरक्षित निकालने के मामले में जापान अपने कानूनों के तहत निर्णय लेगा। अमरीकी रक्षा विभाग ने ईरान युद्ध के लिए अमरीकी संसद से 200 अरब अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त राशि की मांग की है। ये मांग ऐसे समय में की गई है जब अमरीका का कर्ज रिकॉर्ड 39 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। अमरीकी संसद में इस सप्ताह H-1B वीजा कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर इस वीजा पर अमरीका में काम करते हैं। इस बात पर भी चर्चा की गई कि इस वीजा के लिए मौजूदा लॉटरी सिस्टम ठीक है या नहीं। अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त आर्थिक समिति के अध्यक्ष डेविड श्विकर्ट ने कहा कि अमरीका में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम है, जन्म दर घट रही है और काम करने वाले युवाओं की संख्या भी कम हो रही है, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अमरीकी संसद में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है। इसका उद्देश्य कुशल विदेशी प्रतिभाओं को अमरीका में बनाए रखना है। इसका लाभ भारत सहित हजारों विदेशी विद्यार्थियों को मिल सकता है। ये कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा नवंबर में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम को समाप्त करने के संकेत के बाद उठाया गया है। इससे भारत के लिए ये मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय छात्र अमरीका में सबसे बड़े विदेशी छात्र समूह में से एक हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय शिक्षक और एडटेक उद्यमी अलख पांडे ने फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में जगह बनाई है। वे इस वर्ष भारत के 229 अरबपतियों में शामिल हुए हैं। एक रिपोर्ट।
फोर्ब्स सूची में शामिल भारतीयों में सबसे अमीर मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी हैं। ओपी जिंदल समूह की प्रमुख सावित्री जिंदल देश की तीसरी अमीर महिला बन गई हैं। वे भारत की 20 महिला अरबपतियों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सभी भारतीय अरबपतियों में सबसे अधिक कमाई देश के चौथे अमीर व्यक्ति लक्ष्मी मित्तल ने की है, जो इस्पात कारोबार से जुड़े हैं। इस साल की टॉप 10 सूची में कोटक महिंद्रा के संस्थापक उदय कोटक भी शामिल हैं। इन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इस वर्ष फिर से इस सूची में जगह बनाई है। चिराग की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए कृष्णकांत।
भारत के भूपति राजू अनमिश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम उम्र समय में चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम निवासी अनमिश ने इन चोटियों पर 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में चढ़ाई की है। भारत 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये चैंपियनशिप ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम परिसर में आयोजित होगी। ये पहला अवसर है जब भारत को इस प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। इस वर्ष की विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से पोलैंड के तोरुन में शुरू हो रही है। इसमें 26 स्पर्धाएं होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी के साथ बात की। पश्चिम एशिया में ऊर्जा ढांचे पर हमलों की निंदा की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। ईरान ने इसराइल के उत्तरी शहर हाइफा में तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमले किए हैं। एडटेक उद्यमी अलख पांडे फोर्ब्स की 2026 की विश्व अरबपतियों की सूची में शामिल। भारत के भूपति राजू अनमिश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया और भारत 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।